बने रखोगे?
ब्रह्मांड के सात आवरण ये, जिसको आदमी जाके ही पार हो जाता है। सीधा सुबह सात आवरण माने क्या है? ये पांच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, महत्त्व और प्रकृति, ये सात आवरण। प्रकृति का आवरण इतना मनोहर है, इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मालोक में भी वो टूट रहे हैं। आदमी उसमें पर्वत आकृष्ट हो जाता है, उसको भेद नहीं पाता, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसे मुग्ध हो जाते हैं। किंतु भारत से एक ऐसा शास्त्र है जो क्रम मुक्ति के दृष्टि से ये सात आवरणों को भी पार कर, किंतु हम लोगों का यह श्रवण और कीर्तन ऐसा नहीं, सात आवरणों की भी बात नहीं है। ये क्या है? शब्द ही इन समस्त आवरणों को एक साथ पार करता हुआ ब्रह्मलोक को तो पार करता है, विद्या को पार कर जाता है। इसके बाद में शिवलोक को, सिद्धलोक को, वैकुंठ लोक को, राम लोक को, गोलोक को, द्वारका को, मथुरा को भी पार कर विद्या देता है। ऐसा ये श्रीमद् भागवत बताया है कि जैसे सर्व वेदांत सारं ही श्रीमद् भागवतम उच्यते, तत् रसां रसिः तस्य नान्यत्र शाब्द रसिः पतिः। यदि भागवत का रस किसी व्यक्ति को मिल गया, एक बूंद भी, वो किसी शास्त्र में उसकी रुचि नहीं जगेगी। वो भागवत नहीं पा रहा है उसका रस आस्वादन नहीं मिला, तो वो गीता पढ़ते हैं, स्वर्ग संहिता पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे, मरने पर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, ये सब। और जिसको एक भागवत के एक श्लोक में ही रुचि हो गई है, रस मिल गया है, वो किसी भी शास्त्र को उठाएगा। निम्न दानं यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा, नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, भगवती गंगा कृष्ण की प्रिया है, और देवों में अच्युत माने कृष्ण सबसे अधिक श्रेष्ठ है। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? वैष्णवान यथाथम इस प्रकार से दुष्ट पुराणाम इदम तथा। ये श्रीमद् भागवत पुराण भी समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में, वेद वेदांत उपनिषद सब में यह श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम पुराण, मतलब यद वैष्णवान, ये वैष्णवों का प्रिय है। पढ़ते तो और लोग है, अद्वैतवादी, मायावादी, रामानुज के भी संप्रदाय के, मध्वर संप्रदाय के और सभी लोग ये सब, किंतु विशेष करके ये वैष्णवों का प्रिय है। वैष्णव का चिन्ह क्या? ये ऐसे उग्र पुत्र धारण कर, गले में तुलसी, हाथों में हरे कृष्ण की माला, तुलसी की सेवा करें, भागवत की तो श्रवण और पठन, ये वैष्णव। और उसमें भी एकांतिक वैष्णव है, कृष्ण के प्रति जरूर, उसमें भी किशोर किशोरी जी के प्रति अनुरक्त है, उनको यह अधिक प्यार है। उसमें भी किशोर किशोरी जी पूजा करने वाले, आराधना करने वाले वृंदावन में निम्बास संप्रदाय के लोग भी हैं, राधा पल्लवी भी हैं, और लोग भी कटी स्थान भी है, सभी लोग। किंतु गौरी वैष्णव विशेष है, महाप्रभु की धार वाला, क्यों? वो कृष्ण से भी राधा की तरफ में उठी दे, राधा जी के कृपा के बल पर कृष्ण को भी कुछ नहीं देते, इसलिए ये कृष्ण से भी अधिक राधा के पक्ष वाले ये भागवत उनका सबसे अधिक उसी को बदला है। भागवत महात्म ने व्यास जी स्कंद पुराण में श्रीमद भागवत की का महात्म वर्णन किया। स्कंद पुराण पुराणों में सबसे बड़ा उसमें अधिक संख्या है। व्यास जी इसमें प्रणाम करते हुए श्री सच्चिदानंद घन स्वरूप कृष्णाय चानंद सुखादि वर्ते हैं विपो भवत्सान खान निरोध हे कवे मुमो वयं भक्ति रसाक्तये अंश। हम कृष्ण की रश्मि भक्ति को पाने के लिए नित्य निरंतर सचिदानंद स्वरूप श्री राधा कृष्ण का हम पुनः पुनः वंदन करें रश्मि भक्ति के लिए। व्यास जी का जो विश्व की स्थिति सृष्टि और संहार के मूल है उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करके उन्होंने महात्मा का आरंभ किया। एक समय ऋषियों ने चमक आदि दी थी श्रीमद भागवत की कथा दी। हमने पहले बतलाया था ना पहले दी थी जो पहले हुई पहली कथा पर हुई कलयुग से 30 वर्ष बीतने पर कौन कथा सुनाया परीक्षित महाराज जी को। अब तो आपने चुपचाप बैठ गए और 200 और वर्षों के बाद में मैंने 230 वर्ष कलयुग बीतने पर एक और कथा
पहले वर्ष
ये कौन सा रहा
सुख सुंदर
सुख जी और ऋषियों को सुख गोस्वामी ने समझा और तीसरी हुई ने दूसरी धुंधकारी वाली जिस गायक कर रहा धुंधकारी को सुनाया वो कर ली और ठीक उसके 30 वर्ष और बाद में मैं 260 वर्ष बाद में सनत सनंदन सनत कुमार जी ने भक्ति के उद्देश्य से नारद जी को ये सब कथाएं सुनाई जिसमें भक्ति देवी पूर्ण जमन संपन्न हो गई आभूषणों से लग गई और उनके लड़के ज्ञान विराज भी पूर्ण हो गई। इसके बाद में फिर बहुत सी कथाएं हुई जिसमें ये सुख सौमत की कथा थी ये और उसके बाद तो कितनी कितनी बार इसकी बैठ बैठी सबसे ज्ञान सबसे सप्ताह सुख गोस्वामी नैनीतारण्य में पूछ रहे हैं सुख गोस्वामी को समझा दी जबकि युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज जी को राज्याभिषेक में बैठा दिया और हिमालय में चले गए और उनके भाई भी अर्जुन सहदेव और द्रौपदी जी भी चली गई उत्तराखंड और वो लोग एकदम यहाँ से छोड़ करके वैकुंठ लोक में भी चले द्वारका में चले। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया कौन परीक्षित महाराज जी और कृष्ण की गद्दी पर बैठा दिया था उनके प्रपौत्र को बच्चना तीनों ने किया तो उसी को बतला रहे हैं। कुछ गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न होकर के बतला रहे हैं ये भी कथा ये कथा बतलाने के उसमें है
स्कंद पुराण
स्कंद पुराण तो वो कह रहे थे उस समय में एक बात परीक्षित महाराज जी इस मथुरापुरी में आए उसमें बद्रीनाथ जी को यहाँ का राजा बना दिया था परीक्षित महाराज जी अर्जुन के कहने से। कृष्ण ने कहा अर्जुन को और अर्जुन ने परीक्षित महाराज जी को, और परीक्षित महाराज जी बद्रनाथ जी छोटे थे, उनको मथुरा का राजा बना दिया। कृष्ण की पत्नियां इत्यादि भी इन्हीं के पास में रोहिणी इत्यादि रही। वो जो अर्जुन जी को ला रहे थे और गोपो ने लूट लिया, वो तो एक मैसमेरिक था, मैसमेरिक ही मान लिया,
हरकत का जादू,
वो जादू था। कृष्ण की पत्नियों को भला गोपलो लूट सकते हैं, कृष्ण लूट सकते हैं? इसलिए कोई कोई कहते हैं कि वो कृष्ण ही गोप के रूप में आए और अपनी पत्नियों को लेकर के चले आए ब्रज में, और ब्रज से बोलो चिंता। किंतु इसमें उल्लेख से मिलता है रोहिणी इत्यादि उनकी जो और माताएं थी वो सब उनके साथ में थी, बद्रनाथ जी के साथ। उसी समय में परीक्षित महाराज जी हस्तिनापुर से यहाँ पर उपस्थित हुए मथुरा। उनको देख करके उनको बड़ा आनंद हुआ बद्रनाथ जी को, मानो उनके पिताजी या बाबा आ रहे। बस अपनी माताओं को लेकर के और अपने मंत्रियों को लेकर के वहां से बाहर, नगर से बाहर आए और उनका बड़ा आव भगत ताकि आज हमको उतना ही आनंद है कि हमारे पिताजी या हमारे पिताजी के पिताजी जा करके हमारे पास में आते। आज मैं समझ रहा हूं कि हमारे परम पत्र छाया आप होती है। मैं भी चिंत हूं। उन्होंने कहा कि कुशल से है, कुशल से हूं। माताएं ठीक है? हाँ ठीक है, सब कुछ चल रहा है। किंतु बिना प्रजा का राज कर रहा हूं, कोई प्रजा नहीं। मथुरा जो पूरी हो गई थी ना, वो लोग सब चले। परीक्षित महाराज ने कहा देखो तुम सब प्रकार से सुखी और शांति रहो, किसी बात की चिंता मत करना। तुम जब जब कोई विपत्ति आए, जब जब कुछ आए, तो मुझे बस सूचना कर देना, बस इतना ही करना। कृष्ण तो अंतर्ज्ञानी थे, जान लेते थे, मैं अंतर्ज्ञानी तो नहीं, किंतु केवल मुझे सूचना कर देना, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम चुपचाप आराम करना। ऐसा कहने वाला बतलाव को कहने से कितना है आस पास, कोई विपत्ति कोई भी आए और जब कोई ले ले अपनी सीट पर और हम लोग आराम से भजन करें, तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? हम पर छोड़ना नहीं चाहते। परीक्षित महाराज कहने से वो गदगद भरे आंखों में आंसू आ गए और बोले कि मैं ठीक समझता हूं कि आप मेरे माता और पितामह या पिता। तो एक बात कृपा करके करें, हमारी तो कोई प्रजा नहीं है और मैं राज्य करता हूं, कैसा राजा अपने राज्य की पत्र में राज्य की गलत। पर साथ ही साथ उन्होंने हजारों बनियों को यहां पर ले आए दिल्ली से, बड़े बड़े शेख साहूकारों, वही शेख साहूकारों के आज के जो बनिए लोग हैं यहां के, उन्हीं के पुत्र प्रपौत्र के रूप में बन सकता है। ब्राह्मणों को भी बुला दिया और जितने भी हो सकते हैं तांबूली तांबूल देखने वाला और सब जो सबको बुला करके यहाँ पर सुंदर सुंदर रूप में मथुरा की चार वो चार रोड में यह रास्ता है ना, ये होली गेट से भक्तपुर और वहां से वहां, वहां से वहां, ये उन्हीं का ये सब ऐसा बनाया हुआ। बहुत सुंदर नगरी ने इसे सजा दिया और सजा करके फूल से बोले अभी पांच फूल से नंद बाबा के जो पुरोहित है सांडिल्य ऋषि इत्यादि को बुलाया और सांडिल्य ऋषि को बुलाया। उन्होंने कहा हमारे ऊपर में और इसके ऊपर में कृपा करें, ब्रज अब शून्य हो गया है, केवल जंगल ही जंगल है। कृष्ण ने कौन सी लीला कहां पर की किसी को दूसरे को मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं और बद्रनाथ को भी मालूम नहीं। आप तो सब जानते हैं उस समय के आप हैं। इसलिए कृष्ण ने कहां पर गोवर्धन उठाया, कहां पर अनाकुंड और श्याम कुंड है, कहां पर नंदगांव बरसाना, जावत, प्रेम सरोवर, साकेत इत्यादि स्थान है, कहां चरण पहाड़ी है, कहां काम्य वन है, कहां पर वृंदावन है, ये सब लुप्त हो गया है। इसलिए आप बता करके इन सब स्थानों का मैं दर्शन किया और मुझसे जो आज्ञा करेंगे वह करूंगा। उन्होंने कहा पहले यहां पर गोविंद देव की स्थापना हो वृंदावन में, ये गोविंद की स्थापना उन्होंने कराई, परीक्षित महाराज ने सांडल्य की स्वीकार, गोविंद मदन मोहन और गोपीनाथ। तो वो जो पहले बने हैं गोविंद जी ने मदन मोहन, तो उसमें थोड़ा सा उनको कुछ रुचि मारी, तो फिर मदन मोहन को गोविंद जी का और उसमें भी थोड़ा सा कमी रह गई, माने खूब सुंदर चरण कमल हुए ये मदन मोहन जी का ना।
हाँ।
और गोविंद जी का क्या
वस्तस्थल,
ये खूब सुंदर हुआ किंतु दोनों में मुखमंडल खूब सुंदर नहीं हुआ। अंत में गोपीनाथ जी को किया, गोपीनाथ जी का मुखमंडल भी बड़ा सुंदर हुआ और वो तीनों में तीनों को लगा करके सबके पूरे हो गए। इसलिए ये तीन हुए एक ही विग्रह थी, गोविंद गोपीनाथ और मदन मोहन की प्रतिष्ठा। गोपेश्वर महादेव की स्थापना हुई राक्षस स्थली के पास में, राक्षस स्थली में बंसी बटी समय था, वहां पर शंकर एक कोने में, सुखदेव जी एक कोने में, भागवत ऋषि एक कोने में और एक कोने में व्यास थे। अब उसको कुछ बदल दिए हैं,
हनुमान जी ला दिया,
किसी ने हनुमान जी को बैठा दिया और किसी ने किसको बैठा दिया। तो इस तरह से और गोवर्धन ने बैठाया हरिदेव जी को, कामवन ने कामेश्वर महादेव को, साकेत ने संकेती देवी, जहां यहां पर ये सब नहीं हुए वहां पर बड़े बड़े कुंड और सरोवर बनाए इन्होंने, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, गोविंद कुंड, सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, ये सब चीजें यहां, पावन सरोवर नंदगांव में, बरसाना में ऋषभानु कुंड, ऋषभानु को भानु को, और संकेत दिया वहां पर बीच में चक्री खोद चित्रा कथी जी की
शिक्षौली
शिक्षौली इत्यादि
समय करेला
और समय करेला इत्यादि स्थान है,
ऊंचा गांव,
ऊंचा गांव ललिता जी का गांव, राधा जी की ससुराल
जावत
जावत। इस तरह से ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जहां पर श्री कृष्ण की लीलाएं नहीं हो और उनकी परिक्रमा किया, जैसे कि उसी समय से परिक्रमा आरंभ कर और उन स्थानों पर छोटे छोटे गांव बता दिए, ग्वालियर के गांव, ब्राह्मणों के गांव, गुजरों के गुजरी गुजरी मैंने किया, गुजर की जो रमणिया है उनको गुजरी कहते हैं। इसी तरह से ब्रज में सब पुनर्स्थापना कर दी, परिक्रमा आरंभ कर दी, ये पांच दिन की परिक्रमा, पांच कोस की, ये सात कोस की, ये चौदह कोस की और एक गरुड़ गोविंद वृंदावन, और ये तीनों की मिला करके तीन परिक्रमा से सुनकर और चौरासी कोस ब्रज मंडल की परिक्रमा इस तरह से सभी चीज का प्रचलन उस समय से हुआ और ब्रज को पुनः से प्रकाश कर दिया। इस तरह से ब्रज को प्रकाश करने पर एक दिन जमुना जी के पास में जितनी कृष्ण की जो अभी स्त्रियां बची थी यमुना जी के पास में यहाँ पर आई वृंदावन में। जब आई तो उनसे कहा, यमुना जी आप तो सप्त में प्रसन्न रहते हैं, हम तो बड़ी दुखी रहती हैं कृष्ण के लिए, आप क्यों इतनी प्रसन्न हैं? उन्होंने कहा, इसमें बताया मैं राधा जी की कृपा से प्रसन्न हूं, राधा जी की हमारे ऊपर में बड़ी कृपा है, कृष्ण की ये परम प्रिया है और सखियां जितनी हैं राधा जी की लता की पत्ते हैं, उनके कोई का शायद कोई प्रकार चंद्रावली तक भी उनकी पत्ते हैं, उनकी काय जीव है, ललिता विशाख आशीर्षा सब उनकी काय जीव है, कोई उनके प्रकाश है, कोई उनके प्रकाश का भी प्रकाश, कोई उनके अंश के अंश का अंश, कौन ये देवी, कौन देवियां है, ये कामन देव की पत्नी है, ग्रीन की पत्नी, ये सब जो पत्नियां हैं उनकी अंश और कला है, राधा जी की कायदियों कौन है, ये सखियां बतलाया, और उनके अवतार का अवतार, अंश का अवतार द्वारका में महिषियां हैं, रुक्मिणी सप्तधामा देवी एक ही, और उनकी छाया है क्या इस जगत में महामाया, दुर्गा काली विध्याचल भाषिणी इत्यादि उनके तय करना, राधा जी के प्रकाश, तो मैं राधा जी हमारी कृष्ण की बड़ी सबसे प्रिया है और उनकी सप्तम उनके मेरे ऊपर में दृष्टि रहती है, ये यमुना जी कौन है, विशाखा जी, विशाखा जी ने एक रूप धारण करके ये कालिंदी यमुना जी बनी है और इन्हीं से वो जो द्वारका में जो कालिंदी जो कृष्ण की पटनानी है वो उनके अंश के अंश है और जो समुद्र पथ जामिनी जो यमुना है बाह्य रूप से वो उनके अंशों के अंश के कला, इस तरह से उन्होंने बताया, तो मैं उनकी कृपा से सप्तम में देखती हूँ, उनकी अप्रकट लीला, उनका विरह उनको व्याप्त नहीं है, इसलिए राधा जी की उपासना की जाए, कृष्ण की उपासना की जाए तो उनका विरह भी दूर हो जाए, किंतु यह कैसे होगा, उद्धव जी के बिना कृपा के नहीं होगा, उद्धव जी दो रूप हैं, एक कृष्ण लीला के बाद में चले गए बद्रिकाश्रम में और अपने मूल शरीर से कहां रहे, इस वृंदावन में गुप्त होकर के घाट बंद करके कहां कुसुम सरोवर श्यामकुटी के पास में वहां है, यदि उद्धव जी की कृपा हो जाए तो उनका विरह दूर हो जाएगा, उद्धव जी ने कैसे, उस समय कालिंदी जी ने कहा कि हम सभी चले कुसुम सरोवर में, कुसुम सरोवर के पास और वहां पर भागवत हो और वहां पर सभी मिल करके कीर्तन करें, जैसे गोपियों ने कीर्तन किया था जय सीतम, ऐसे ही कीर्तन हो और सब मिलकर के कीर्तन करते हुए जब कीर्तन कृष्ण कीर्तन में तन्मय हो जाएंगे तो उनसे रहा नहीं जाएगा, जरूर वो प्रकाशित हो जाएंगे उद्धव और उस समय दर्शन होगा और तब उनकी शिक्षा से हम लोग भी ऐसा कर सके, परीक्षित महाराज जी भी बद्रनाथ जी भी अपनी समस्त माताओं को लेकर और वहां पर कुसुम सरोवर में गए, वहां पर भागवत हुआ और इसके बाद में जब ये पूर्णाहुति हुई आज के दिन में खूब जोरों से कीर्तन आरंभ हुआ, इसके पहले बतला देना चाहता हूं, भागवत का पाठ बहुत तरह से होता है, कोई 7 दिन में इसको समाप्त करते हैं, उसमें अर्थ के साथ साथ में जैसा साधन होना चाहिए नहीं होता। कोई अपने पास करते हैं, यदि मुक्त महापुरुष हो और अपने गुरु रचित हो और उनसे पढ़े हो तब तो उनको कुछ होगा, रस की अनुभूति होगी, अन्यथा नहीं। तो केवल जो पाठ कर जाते हैं, अर्थ का साधन नहीं कर पाते, वो एक प्रकार का पाठ, उसे दुख की मुक्ति भोग मिल जाएगा। और जो सात दिन में सप्ताह सुनते हैं, वो तो श्लोकों के ही पढ़ने में ही सात दिन लग जाए। इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ ऋषिक जैसे रख दिए जाते हैं, मूल वक्ता कुछ श्लोकों के साथ में हरि कथा उसमें जो कुछ तत्व है और उसमें रस की बातें हैं वो कहता है, और वो लोग उसका पाठ उच्चारण करते हुए सात दिन तक उसका प्रवचन करते हैं, पारायण करते हैं। और एक होता है द्वादश दिन का, अभी से कुछ लंबा हुआ, उसमें कुछ अर्थ विचार होंगे, उसमें चार दिन में आठ स्कंद, चार दिन आठ हो गया ना, एक दिन नौवां और बाकी दिन हुआ दसम और एक दिन में एकादश, इसमें कुछ और सहूलियत मिल जाती। और सबसे उत्तम माना गया है एक महीने का भागवत, एक महीने के साथ में रसिक वक्ता हो, सत्पज्ञ हो, रूप गोस्वामी और हमारे गोस्वामियों की के जितने भी ग्रंथ हैं उनको जानने वाला हो, महाप्रभु के विचारों से चैतन्य महाप्रभु के विचारों से अवगत, जिन्होंने गोपाल चम को वृंदावन चम को पाठ किया है, उज्जवल मणि भक्ति रसा सिंधु और हमारे गोस्वामियों के ग्रंथों को पाठ किया है, उनसे मुझसे एक महीने तक यदि ये कथा हो, परम रसमयी कथा होगी और कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सुस्त रूप से इसमें कहीं सुनी जाती है। इसलिए इसको सबसे उत्तम माना गया, ये संसारिक फल रहित होगी, केवल कृष्ण की रस का आस्वादन करने के लिए ही। सुखदेव गोस्वामी हमारे उद्धव जी ने ऐसा ही कहा। तो इस तरह से अब कीर्तन होने लगा, कृष्ण के नाम का कीर्तन होने लगा, श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद हरे नंद किशोर श्री कृष्ण गोपाल हरे गोविंद हरे नंद किशोर नाम का हरिहरे नम कृष्ण जादवाय नम हरि Yeah. किया, बारी बारी से इस प्रकार से नीचे से उठा करके राधा जी तक ले गए, कुमूल रूप से कीर्तन होने लगा। जब सब लोग कीर्तन में मत हो गए, गले में बैठे ही कृष्ण की दीवी माला पीताम्बर वैसे फेटे कटे हुए एकदम नित्य करते हुए उद्धव जी उन गुलम से निकल करके वहां पर आ गए। वहां पर उपस्थित थे और जब वो कीर्तन में नित्य करने लगे तो और भी उसमें रस बरसने लगा। कृष्ण से और रहा नहीं गया, कृष्ण आ गए, राधा जी से भी नहीं रहा गया और अपनी उनकी जितनी पूरी सहेलियां सखियां थी रात के समय में वो सब रक्त होकर गई। अब एक संकीर्तन सुनने लग गया तो जाते जब राधा कृष्ण और सखियां सभी आकर के वहां पर कुसुम को रंग पड़ती सब लोग एक संदेश को किसी के तन की शुद्ध नहीं गई, मन की शुद्ध नहीं गई। ये भागवत भागवत की यही हुई क्या पूर्णा हुई थी, हम लोग की भागवत की पूर्णांति भी इसी हो सकता है कि उद्धव जी आ गए हो, जरूर आए, हम लोग दुर्भाग्य इसलिए देख नहीं सकते और भी हम लोग को पवित्र होना पड़ेगा और उसमें राधा कृष्ण भी जरूर आएंगे, जब उद्धव भी आ जाएंगे और जब राधा कृष्ण आएंगे तो सब कुछ ऐसा कृष्ण नहीं है जहां पर भी राधा कृष्ण आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों की भागवत की तुलना की आरती भागवत की ऐसी ही महिमा है, भागवत ये तो पुरानी पुराण रूपी सूर्य है और कृष्ण के स्वरूप है ये स्वयं, राधा जी के भी ये स्वरूप। हम लोग पुनः पुनः श्रीमद् भागवत की वंदना करते हैं, कृष्ण स्वरूप की वंदना करते हैं, श्रीमती राधिका जी की वंदना करते हैं, आप श्रोताओं की वंदना करते हैं, वक्ताओं की वंदना करते हैं, इस स्थान की हम वंदना करते हैं, यहाँ के पूर्ण वायुमंडल का हम लोग सबको प्रणाम करते हैं। हम लोगों को भी एक दिन ऐसा हो कि हम लोग भी कृष्ण के इस कीर्तन में हम लोग ऐसे कीर्तन में हो। अभी तो मन सुखा जी एक थोड़ा सा कीर्तन आपसे सुनाइए, तब हम लोग सभी अभी यहाँ पर जाइए। ज्ञान के स्वरूप स्वामी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी अनंत कोटि वैष्णव वृंद की पांडु वर्ग की हरिनाम संकीर्तन की वृंदा देवी की जय भक्ति देवी की जय ग्रंथ भागवत की जय श्री राधा कृष्ण गोपीचंद राधा कुंज श्याम कुंज गिरिराज गोवर्धन की जय गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय वृंदा देवी की जय भक्ति देवी की जय यमुना देवी की जय सभी भक्त वृंद की जय श्रोता वक्ता वृंद की जय भागवत ग्रंथ की जय सचिनंदन गौर हरि की जय पावन नित्यानंद प्रभु की जय
क्योंकि प्रभु कहे कहो कृष्ण कृष्ण तारे आ लेंगे के प्रभु हृदय कृष्ण से उठा उठा कृष्ण कृष्ण बोलो किंतु अंतर कार अभिलाषा ये यदि राम 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 तारे हमें कहा से आलिंगन कर तथापि पूछ ले तुम्हें राम राम बोलो तुम्हें की राम राम बोलो तखन के लिए दिनता कर अपनी बोल लें সেই হও দাস সুদ্রমন্দ সেই হও সেই রায়ানন্দ কিন্তু আমি দাস শুদ্র আর মন্দ দাস মানে এই বিষয়ী রাজার দাস মায়ার দাস আমি হই রায়ানন্দ কিন্তু আপনার ধারণা যেরকম আছে তাতরূপ রহায় তো আপনাকে বলেছে আমি খুব রসিক বৈষ্ণব ভাগবত উত্তম আমি সেনা আমি হচ্ছে বিষয় এই বিষয় কাজ আমি করছি এই রাজার দাস বিষয় আছি আর শুদ্র শুদ্রকে যারা সব সময় বিষয়ের জন্য শোক করে তারা হচ্ছে শুদ্র মন্দ মন্দ ভাগ্য বৈষ্ণবের সঙ্গ যদি না হয় হরিভজন যদি না হয় তাহলে তার থেকে মন্দ দুর্ভাগা কেউ নেই মা এমন ছেলা এমন প্রাবল্য যে আমরা ভক্ত না পেয়েও নিজেকে অত্যন্ত ভালো মনে করছি সুখী মনে করছি এ থেকে মন্দ ভাগ্যের আর কোন চরম কিছু কিছু শুনেছি যে ভগবত ভজন করা বৈষ্ণব সঙ্গে থেকে হরি ভজন কর বিশেষ পিপাসা সব দূর করে দিল কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না তাহলে এ থেকে মন্দ আর কিছু হতে পারে চাই না আমরা শুকরকে যেরকম হয় পাথর মারলে পায়খানা খাচ্ছে আর মারলে সে কি হয় এদিকে দেখবে একটু ভয় পালাবে আবার দেখবে এসে দিয়ে চলে আবার সে দিচ্ছে আমাদের উপায় সকলেই না যারা বৈষ্ণব লোক যারা ভগবত ভজন করছে তাহাদের সাধারণ ভাবেছে যারা আমি বুঝতে পারছি না আমরা ওরা বিষয়ের জন্য সব সময় লোক ভগবানের উপর বিশ্বাস নাই যে তিনি আমার রথকে এমন পালন কর্তা ভগবানের উপর বিশ্বাস নাই দুটি টাকার উপরে বিশ্বাস যে কালকে খরচ হয়ে গেলে আর কোন নিজের বুদ্ধির উপরে সে খুব বিশ্বাস যদি মঠে আমাদের কিছু পরে কি হল তখন কে এখন থেকে চিন্তা করে দিয়ে কিছু টাকা পয়সা রোজগার করা দরকার কিছু জমা করা দরকার কিরকম হলে সুখের থেকে ভজন করতে পারবে ভজন করতে পারবই তা না বেশ আরামে সহি ভজন করতে এইগুলি হচ্ছে মায়ার দৃষ্টি এই হচ্ছে মন্দতা এই যতদিনই যেগুলি থাকবে স্বরূপ সিদ্ধা ভক্তি সেখানে সম্ভাবনা করার ভাবনা এই যেন তিনি নিজেকে শুদ্ধ প্রেম বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন দরিদ্র কাহারা ও বলেছেন যে গার্গী গার্গী দেবী যো বা এতদ অক্ষরম অপি বিশ্বাস স্মান লোকাশ প্রৈতিক কিপরম দরিদ্র ওই দরিদ্র আমরা জেনেছি না তাহার জন্য যেরকম ভাবে চেষ্টা করা উচিত করছে সব সময় আমাদের ভোগ এগুলি বাধা দিচ্ছে আমাদের বৃত্তিগুলি বাধা দিচ্ছে তবে তার কইল প্রভু দৃঢ় যখন বললেন তিনি তো জানেন তথাপি তার বাক্যে তিনি এত নর লীলা তিনি অভিনয় করছেন, সেই জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে জেনে আবার দীর্ঘ ভালো চালিয়ে প্রেম আবেশে প্রভু ভিত্ত দোহে অচেতন, প্রভু আর ভিত্ত দুইজন অচেতন হইল। স্বাভাবিক প্রেম দোহান হইল, স্বাভাবিক প্রেম মানে কি? তাহার স্বাভাবিক যে স্বভাবের যে প্রেম আছে কি, মহাপ্রভু হচ্ছে কৃষ্ণ আর তিনি কি
বিশ্বাসী,
সেই ভাবটা স্বাভাবিক উচিত হয়ে দুজন মিললেন, দুহা লিঙ্গিয়া দুহে ভূমিতে পড়ে অচেতন হয়ে গেলেন। শ্বেত স্তম্ভ শ্বেত অস্ফুট কম্পতুলক বৈবরণ, দুহার মুখে তো শুনি গদগদ কৃষ্ণ বরণ, উনিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতেন বলতে লাগেন, আমি রাধা ভাব যদি ভাব হয় ইনিও উনি কৃষ্ণকে বুঝলেন যে ইনি কৃষ্ণ, এই জন্য কৃষ্ণ কৃষ্ণ করতে লাগেন, আর ইনি কৃষ্ণ বিরহেতে যেন উন্মাদিত হয়ে তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতেন। অর্থাৎ তুমি জানো কৃষ্ণ কোথায়, এই ভাবতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আর উনি বলতে লাগলেন যে তুমি তো কৃষ্ণ, এই ভাবতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে লাগলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণের গণ হইলেন, ব্রাহ্মণের গণের চমৎকার কি সে আন্তর্ভাবে নহিভাব, তিনি ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী, কাল ব্রাহ্মণ ছাড়া সন্ন্যাস হতো না, ইনি ব্রাহ্মণ আর দেখতেও খুব সুন্দর সুকান্ত কিশোর বয়স অরুণ বসন আর সেরকম অঙ্গ স্বস্থ তাহার, আর ব্রাহ্মণ আর সাধারণ মনে হয় না, সেই যেবারে ফুটে পড়ছে, আর রামানন্দ কিরকম শুদ্ধ জাতি তো কিন্তু মহাগম্ভীর মহাপণ্ডিত, এত বড় রাজ্যকে সঞ্চালন করেন কত গম্ভীর, আমরা তাঁকে আশীর্বাদ দিতে ব্রাহ্মণ রূপে এসেছি কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বিদ্বান বেদ শাস্ত্র সব তাহার মুখে, কত গম্ভীর লোক, আমার দেখে কথাই বলেন না, আজকে এই বাতিল হয়ে যাবে পাগল হয়ে যাবে এই ব্রাহ্মণকে দেখে, আর ওই ব্রাহ্মণটাকে দেখতে যে সে অন্য জাতিকে ছুটে না শুদ্র ইত্যাদিকে আর তাহাকে আলিঙ্গন করলো, এই বাহ্য ভাব দেখলেন, আর দেখলেন কি দুজনে চোখেতে জল পড়ছে আর ভূমিতে গড়া গেল কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এই বাহ্য দেখলেন, ভিতরের অবস্থা অনুভব করতে পারেন, যদি ভিতরের অবস্থা অনুভব হতো তাহলে কি হতো, তারা সকলে লুটিয়ে পড়ত, উদ্ধব গেলে গিয়েছে ব্রেজেতে, উদ্ধব ব্রজনে গিয়েছে আর দেখলেন এই ব্রাহ্মণ দেব, উপরে ভাব দেখলেন আর উপরে ভাব দেখে বিস্মিত হলেন, গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি কত অভাব প্রেম, নন্দ বাবার কত আঘাত প্রীতি, যশোদা সমুদ্রে তো ছাই পেলাম না, নন্দ বাবার স্নেহ সমুদ্রেতে আমি একটি বাঁশ লাগিয়ে দেখছিলাম কিন্তু পাতা পাই, কিন্তু এর যশোদা দেবীর গম্ভীর জল দেখে কিরকম গম্ভীর বোঝা যাবে, একটু সাদা সাদা জল হবে না তাহলে কি বুঝবে, জল কম উফলায় ওই বালু চালিয়ে চোখেছে, আর তার থেকে একটু গভীর জল তাহলে সেখানে একটা নেই, আর যেখানে জলের পাতা নেই যে কত দূর তাহলে একেবারে কালো, আর সেখানে লহর নাই, সেখানে ঢেউ অত নাই, ঢেউটা কোথা হবে যেখানে সে পিছলে আসবে, তারপরে একটু হবে যেখানে সে একটু জল আছে গভীর কিন্তু তাহার একটু ঠাস হবে, ব্রজেতে গেলেন নন্দ বাবা একটু দেখলেন যে সে একটু দড়িতে ইট বেঁধে দিয়ে একটা ছাড়ি দেখি যে কত জল কি একটা মাছ ফেলাইলেন, দেখুন এরই থাকবে, তারপরে জলটা একেবারে নীল আছে সেখানে যশোদার তুমি কথাই বললেন, তার ভাবভঙ্গি দেখে ভিতরে ভাব উঠতে পারছেন না, উপরে দেখে জ্বর সর হয়ে যাবে, একবার জিজ্ঞাসা করলেন যে তুমি কোথা থেকে এসেছো, কে এসেছো, কৃষ্ণের একটু সংবাদটা বলো, আর গোপীগণের কাছে গেলেন তখন কি হয়ে গেলেন, একেবারে বোবা হয়ে গেলেন, যে দিয়ে ধূপ থেকে নমস্কার করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আর ধূলি থেকে একটু দেখছে, সোনার পুতলি শ্বাস প্রশ্বাস নাই, সব সখীরা তাকে চাতুর্দিকে ঘিরে বসে আছে, যে সখীরা নিয়ে গিয়েছে সখীর সখী, ওরা দূরে বসে গেল, উদ্ধবকে ওইখানে দিকে দিয়ে গেল, আর তখন ধর্মকে দেখে কিরকম উদ্ঘটনা প্রলাপ প্রমাদ এই সকলই করছে। কখনো তিনি মনে হয় যে রোষেতে, মানে তো রোষে তাকে একটা গালাগালি মতন মনে হয়, ও তো কথা হচ্ছে ও লঙ্কট অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি। আর কখনো কখনো বলছে আরে তোমাকে আমি একটু স্নেহ ভালো কোনো কথাই জিজ্ঞাসা করলাম, অভিজ্ঞতা মধ্যে করিয়া আর যে পুত্রাধনা ইত্যাদি বলছে। ওর মধ্যে দেখেছেন একেবারে নীল জল, ঢেউ একটু কম, ঢেউ না, এরা কথা বলছে কাঁদছে, তার আনন্দ বাবা ইত্যাদি যত। আর এদের কাছে দেখলেন কি কখনো কখনো হাসছে আর কখনো একেবারে নিঃস্পন্দন করলেন, তিনি কোন ছায়ের কোন চেষ্টাই করলেন। এই জন্য উদ্ধব সেটি হতে পারেন নাই, দেখলেন শুধুমাত্র বাবা এত প্রেম, এত প্রেম হয় আর এত বিরহ যাহা, তাহলে প্রেম তাহাদের মিলনের মধ্যে যে প্রেম যে হবে সেটি মধুর হবে। তোমার বিরহের দ্বারা, উপরের বিরহের দ্বারা আমি কিছু কিছু উপকৃত হলাম, বেশ উপকৃত হলাম, আমি একটু তোমাদেরকে বুঝতে পারলাম যে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আর সেখান থেকে চলে আসি। যদি আমি এখানে থাকি তাহলে এরা মহাপ্রেমী হয়ে যে দুঃখ ভোগ করছে তাহলে আমাকে এখানে তাপ করতে, এই জন্য ওখান থেকে চলে আসছে।